परम देव नूतन मोक्ष भवन चलो
कि
ये मुकरे लगाने। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे
हरे
हरे राम
हरे राम
राम राम हरे
हरे।
इसको इस तरफ हो बेटा, इधर से सब बोलिए हमारे पीछे नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। थोड़ा स्लो कर लो। सो भाग्यशाली हम हैं कि कार्तिक दामोदर राधा रानी को बहुत प्रिय, राधा दामोदर को बहुत प्रिय ये महीना, और उसका भी अब पूर्णिमा को नजदीक आ रहे हैं, और भगवान के कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के भक्तों का संग और भगवान की कथा का ये आयोजन यहाँ खन्ना साहब के निवास स्थान पे मेरे ख्याल में 7-8 साल से हर कार्तिक में होता है। तो हम धन्यवाद करते हैं इस परिवार का, विभाजी खन्ना और उनकी सुपुत्री रुचि और उनके सब पड़ोसी बंधु बांधव जो वार्षिक इस कार्यक्रम में पधारते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान, जिसके भक्त कौन से मंदिर से, यहां से गुड़गांव से दिल्ली से, गुड़गांव में भी मंदिर है, वहां से ये भक्त कीर्तन के लिए आए, और कीर्तन युग धर्म है। भगवान के नाम का कीर्तन ये युग धर्म है। कलयुग दोषों का सागर है, कलेर दोषे निधे राजन। हे महाराज, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कलयुग में दोष ही दोष है, दोष का सागर है कलयुग। कलह का युग है, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर झगड़ा होता है, घर घर में झगड़ा है, पड़े एक अड़ोस पड़ोस में झगड़ा है, देश देश में झगड़ा है। ये झगड़ा चारों ओर अपना दुष्प्रभाव दिखा रहा है। तो कलयुग दोषों का सागर है। तो महाराज परीक्षित को लगा कि मेरे तो 7 दिन पूरे हो रहे हैं, मेरी प्रजा का उद्धार कैसे होगा। भला राजा वो होता है जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझता है। ऐसे राजा आज सुबह भागवत क्लास में ये था कि जो राजा होते थे, जब अपना उत्तराधिकारी उनका सुपुत्र कोई सगुण संपन्न होता था, अच्छे गुणों से संपन्न होता था, तो महाराज अपने राजपाट को छोड़कर और फिर बेटे को राज देके और तपस्या करने के लिए चले जाते थे उत्तराखंड में, गंगा जी के तट पे बद्री का आश्रम में तपस्या करने जाते थे। तो वहां लिखा है कि राजा अपने पुत्र को राजा तो बनाते थे लेकिन ब्राह्मणों के हाथ में देते थे। ब्राह्मणों के हाथ में क्यों देते हैं? क्योंकि धर्म के मार्ग के ऊपर राजा को चलाए और प्रजा का पालन धर्म के मर्यादा से हो। अब दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा राज नहीं है जिसमें वहां का प्रधानमंत्री या वहां का प्रेसिडेंट किसी ऋषियों के द्वारा धर्म के मार्ग का उसको पता समझाया जाए, ऐसा कहीं भी दुनिया में नहीं। और उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है कि कोई भी प्रजा समय के राजा से प्रेम नहीं करती। पहले राजा महाराजा जब बाहर अपने जनता को देखने के लिए आते थे तो लोग बड़े आनंद से घर अपने रास्ते घर श्रृंगार करते थे, क्योंकि वेद में कहा है, शास्त्र कहता है कि राजा के अंदर भगवान विष्णु का अंश होता है, इसलिए उसको नरदेव कहते हैं। तो उसके आने के ऊपर सम्मान से उठ के खड़ा होना, उसका आदर करना, प्रजा फूल बिछाते थे रास्ते के ऊपर, उनका स्वागत करते थे, क्योंकि राजा धर्म के मार्ग के ऊपर प्रजा को चलाते थे और ऋषि उनको मार्गदर्शन करते थे और प्रजा के लिए बहुत शिक्षा का प्रबंध हुआ करता था। जब से ये व्यवस्था बिगड़ गई है, और ये व्यवस्था बिगड़ी कब से है, 1200 साल तो इसको लगते हैं इस व्यवस्था को बिगड़े को, फिर भी जितने रजवाड़े होते थे, जितने छितने छोटे राज होते थे, प्रायः वो राज धर्म के ऊपर चलते थे। आज भी वृंदावन में जाएंगे तो जमुना के किनारे हर एक राजा के तरफ से बनाया हुआ घाट है। गोवर्धन में राजा महाराजाओं की हवेलियां होती थी, वो हर महीने परिक्रमा करने आते थे। ये सब मध्य प्रदेश और राजस्थान के राजा ये सब महीने महीने अपनी रानियों के सहित आके ब्रज का दर्शन करते थे, घाट बड़े बनाए। और आज भी कुसुम सरोवर इतना सुंदर, ये भरतपुर के महाराज के द्वारा बनाया हुआ है। और घाट जितने हैं, जितनी पुराने राजा महाराजा वहां आया करते थे। क्यों आया करते थे? क्योंकि उनको मार्गदर्शन करने वाले साधु संत हुआ करते थे। अब विश्व भर में सबसे ज्यादा अभाव किस बात का है? न खाने का अभाव है, न पीने का अभाव है, न पानी का अभाव है, अभाव है लोगों के अंदर सद्भावना का, अभाव है परिवारों के अंदर प्रेम और संगठन का, अभाव है ईमानदारी का, अभाव है एक दूसरे के भले करने का विचार आने का, ये इस चीज का अभाव है। और इसका एक ही कारण है कि लोगों ने धर्म का मार्ग छोड़ दिया। लोगों ने धर्म का मार्ग क्यों छोड़ा? क्योंकि राजा को ही धर्म का मार्ग बताने वाला कोई नहीं है तो प्रजा को कौन बताएगा? तो ये बहुत बड़ा, और वैसे भी 200 साल पहले तक, कम से कम 250 साल पहले तक, मुगलों के शासन तक परेशानियां तो जरूर थी, लेकिन फिर भी हमारी विद्या की पद्धति सुरक्षित थी। राजा महाराजा अपने राज अपना राज संभाले हुए होते थे। उस वक्त में सब राजा थे, क्षत्रिय राजाओं को राजा का ही सम्मान था, वो सहयोगी हो जाते थे शासन के। लेकिन ब्रिटिश ने आने के बाद उसने सबसे बड़ा जो हानि पहुंचाई है भारत के संस्कृति को, विद्या पद्धति का विध्वंस किया। फ्री में, मुफ्त में पढ़ाई जो होती थी गुरुकुल में, गुरुजी बच्चे का पालन पोषण भोजन कोई मां बाप से पैसा नहीं लेते थे, और पढ़ाते क्या थे, 14 विद्या, 4 वेद पढ़ाते थे, 6 शास्त्र पढ़ाते थे, और वेदों के अंग पढ़ाते थे, पुराण महाभारत आदि रामायण, इसके ये 14 विद्याएं होती हैं ऐसी, और 64 कलाएं सिखाते थे। तो उस वक्त में अंग्रेजों ने लिखा है कि भारत में कोई भी भिखारी नहीं था, कोई भिखारी नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई अनपढ़ नहीं था। ये भारत का 1800 का इतिहास है, और 1800 का जीपी, क्या कहते हैं, जीपी, जीडीपी 30% था भारत का, और जब अंग्रेज यहां से गया तो 3% छोड़ के गया, और जब वो आया था उससे पहले यहां 100% साक्षर लोग पढ़े लिखे थे, और जब गया तो 17% छोड़ के गया। उसने क्या किया, हमारी पढ़ाई की पद्धति को ऐसा विध्वंस किया, जो राजा महाराजा धर्म के मार्ग पे लोग अपने प्रजा के बच्चों की शिक्षा के लिए गुरुजनों की व्यवस्था करते थे, उसको अवैध करके वो सब बंद करा दी, और जो गुरुजन पढ़ाते थे उन सबको डरा धमका के भगा के भगा दिया, और विध्वंस करने के बाद उन्होंने कहा अब हम पढ़ाई वो करेंगे जिस पढ़ाई से ये लोग हमारी नौकरी करेंगे। पहले बच्चा बड़ा होते ही पिताजी की सेवा में लग जाता था। आप भगवान श्री कृष्ण के तो हम दामोदर लीला का वर्णन कर रहे हैं, ये तो भगवान की 3 साल की आयु की लीला है। 4 साल के होते ही भगवान बछड़े चराने चले गए। अब नंद बाबा का काम क्या था, गैया, वो तो गोपाल था, गोपालों का राजा था, तो भगवान श्री कृष्ण उनका बेटा है, तो पहले बछड़े चराए, 5 साल पूरे हो गए, 6 साल में आया, तो जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं वो पिताजी के गौशाला संभालने के लिए, गाय गैया चराने के लिए चला गया। तो उनकी स्कूल क्या थी, वो तो 16 साल तक होते होते सारे कला जान जाता है। ऐसा नहीं है आज हम गाय को गाय कहते हैं, गायों के तो कितने सारे प्रकार अलग अलग होते, उनका वंश अलग है, उनका प्रकार अलग है, बैलों का प्रकार अलग है, गाड़ी खींचने वाले बैल अलग अलग होते हैं, खेती वाले बैल अलग होते हैं, और वंश बढ़ाने वाले जो है वो बैल अलग होते हैं, उन सबकी पहचान होती। तो ये परंपरा पहले ये हुआ करती थी कि जो कलाएं हमारी परंपराओं से आती थी वो चलती रहती थी। आज भी एक जगन्नाथपुरी एक जगह है जहां रहने वाले जो परिवार आज तक भगवान के भोग के बर्तन बना रहा है, मिट्टी के आज तक ही बना रहा है। जगन्नाथ जी का भोग केवल मिट्टी के बर्तन में लगता है, और पकता भी सब मिट्टी के बर्तन में आज तक, और लकड़ी के ऊपर पकता है, और 4-4, 5-5 मटके एक नीचे आग, 5 मटके ऊपर चावल दाल सब्जी ये सब होते हैं, ऊपर वाला पहले पकता है। आज भी नहीं तो 500 से ज्यादा रसोईया कहते हैं भगवान की कृपा वृंदावन में रज में है, ब्रज की रज, जो गायों के खुरों से, ये गाय हमारे हर घर में हुआ करती थी। भारत की जो इकोनॉमी थी, जो हमारा अर्थव्यवस्था थी, वो तो गाय थी। लोगों के पास पशु बहुत ज्यादा हुआ करते थे, पशुपाल और भूपाल, धरती को पालन करने वाले खेत जो जमींदार, हाँ ये इनको आदमी बड़े मान सम्मान वाले मानते थे। तो बालक तो ये कला जो है ये कलाएं परंपरा में चलती थी, अब सब कलाएं खत्म हो गई। आज आप कभी पढ़ते हैं आधुनिक, आज कहते हैं कि घर में अंग्रेजी में कहते हैं कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करो। अब कोल्ड प्रेस ऑयल का मतलब क्या है? चाहे सरसों का तेल हो, चाहे तिल्ली का तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो, लेकिन कोल्ड प्रेस का अर्थ क्या है? उसका मतलब है मशीन तेज चल के गर्मी पैदा करती है, उससे बना हुआ तेल नहीं, क्योंकि उसमें सब पौष्टिक पदार्थ नाश हो जाते। कोल्ड प्रेस का मतलब जो पहले घानी में ऐसे बेल चलता था, आस्ते आस्ते उसमें से तेल निकलता था और खली होती थी, वो तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब एक भी घानी वाला आपको दिखेगा नहीं, वो एक कला ही समाप्त हो गई। किसी जगह पे जाते हैं तो कहीं से घानी का तेल निकालने का प्रयास करते हैं तो लोगों को बनाने नहीं आ रही। मैं कह रहा जगन्नाथपुरी में आज भी लकड़ी से रथ, भगवान की साल में नया रथ बनता है। एक पूरा वंश, पूरा खानदान है उनका काम ही हुआ है। एक खानदान है उसका काम पूजा है, तो एक खानदान का काम है, तो उन ये अभी तक परंपरा का उधर ही एक मर्यादा चल रही। ऐसे बहुत कम स्थान है जहां मर्यादाएं धर्म की चल रही। तो उस पढ़ाई के विध्वंस के कारण आधुनिक पढ़ाई की जो प्रणाली हमको दी गई है उसका परिणाम क्या, सबसे दुष्परिणाम क्या निकला? हमारी संगठित परिवार टूट फूट के छिन्न भिन्न हो गए। अभी तो चाचा, मामा, दादा, दादी, इनको तो देखने को सीखते हैं लोग, मिलता नहीं है घर में। संगठित जो परिवार होते थे, दादा दादी की गोद में बच्चे जो ये सब रामायण की कथा और भागवत की कथा माँ की, नानी की, दादी की गोद में सीखते थे पहले, इसके लिए कहीं कोई पढ़ने जाने की जरूरत नहीं थी। वो अब समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? कहीं है कोई संगठित परिवार, कहीं मिलता है? ये पहला इस पढ़ाई का दुष्परिणाम निकला। कोई कहे कोई बात नहीं, परिवार टूट गए तो पति पत्नी तो सुखी है, लेकिन वो भी दुनिया के अंदर देखो तो भारत में 30% तलाक हो रहा है। तलाक शब्द तो है ही नहीं हमें अंग्रेजी में, अंग्रेजी में डाइवर्स है, उर्दू में तलाक है, लेकिन हिंदी में इसके लिए शब्द है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास था ही नहीं। वैदिक संस्कृति में तो सात जन्म तक साथ निभाने का जब वचन करते थे कि धर्म के मार्ग के ऊपर चलेंगे, तो उसमें तो ये शब्द है ही नहीं। हिंदी में कोई शब्द है क्या? ये है ही नहीं। तो ये इसका नाम निशान तक नहीं था हमारे पास। तो ये परिवार के टूटने से सबसे बड़ा दुष्प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? बच्चों के ऊपर। अब बच्चे किसकी गोद में जाके बैठे? भाई डांट, माँ डांटे, पिताजी डांटे, तो जाए किसके पास? कोई है नहीं तीसरा जहां जाके उसको सुरक्षा मिले। तो इसलिए बच्चा माँ बाप की मानता नहीं है, अब 10-11 साल के बाद मानने को तैयार नहीं। कोई बच्चा आजकल माता पिता की आज्ञा मानता हो, ऐसा कोई भाग्यशाली हो तो हो, नहीं तो कोई नहीं। ये है सबसे बड़ा दुष्परिणाम निकला है। ये किसके कैसे निकला? क्योंकि हमारी पढ़ाई की पद्धति खत्म हो गई। अब कैसे हम इसको वापस लाएंगे? ये बहुत बहुत बड़ा एक चैलेंज है भविष्य में भारत के लिए, क्योंकि विश्व गुरु यही रहा है सदा। ये कोई मार्गदर्शन करेगा तो विश्व का मार्गदर्शन होगा, नहीं तो पूरी दुनिया के अंदर भोग के पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन किसी को शांति तो मिली नहीं है। सुख, शांति, संतुष्टि ये तो कहां चली गई पता नहीं। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि हम ये कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना लोगों को सुखी करने के लिए कर रहे। तो पूछा कि दुख का कारण क्या है, क्योंकि राजा तो नहीं कर रहे, तो दुख का कारण क्या है? बोला भगवान से बेमुख होना दुख का कारण है। भाई भगवान तो है सुख का सागर। भागवत का जो पुस्तक दशम स्कंद भागवत का जो छपा है उसका नाम ही सुख सागर है। उस पुस्तक का नाम है सुख सागर। सुख को चाहो सदा शरण राम की ले। अगर आपको सुख चाहिए, ये गुरु तेग बहादुर साहब के मुख की वाणी है, सुख को चाहो सदा शरण राम की ले, कहे नानक सुन रे मना दुर्लभ मानक दे। ये दुर्लभ मानव दे, अगर सुख चाहिए तो सुख का दाता भगवान राम है। ये मर्यादाएं इतनी, अब तो किसी बच्चे से जाके पूछो के अभी तो कैसे भी थोड़ा सा टेलीविजन के ऊपर रामायण महाभारत का एक ऐसा आया कि लोगों में थोड़ी सी जागृति आई है, लेकिन उससे आध्यात्मिकता नहीं आई है, सिर्फ वो जानकारी आई है। आध्यात्मिकता और जानकारी में बहुत बड़ा अंतर है। कोई ऐसे इन सब चीजों को देखने से पता लगा कि हमारी संस्कृति कितनी महान थी। वैसे एक बात को प्रभुपाद जी कहते थे, बताओ कि भारत अपनी सीमा से कभी बाहर कहीं आक्रमण करने गया हो, ऐसा कोई उदाहरण है दुनिया में? नहीं। हाँ, तो वो मुगल यहां क्यों आया, तुर्क यहां क्यों आया, चंगेज खान यहां क्यों आया, हाँ तैमूर यहां क्यों आया, अंग्रेज यहां क्यों आया? तो हम धनी थे तब आया ना, वो भिखारी थे तब आए ना, उनके पास नहीं था तब आए ना, वो यहीं से ले जाके सुखी हुए ना। तो इसका मतलब हमारे पास संपन्न, हम संपन्न थे और वो संपन्न नहीं थे तब यहां आए। हम कभी अपनी सीमा से कभी गए नहीं। प्रभुपाद जी का ये बहुत पुराना प्रवचन है कि हम तो कभी यहां से कहीं गए नहीं, हम अपने आप संतुष्ट हैं। लोग यहां आए क्योंकि हम सुखी थे और जो यहां आए वो सब सुखी हो गए, और जब से यहां से गए हैं तब तक अभी तक दुखी है, उनके पास सुख वापस नहीं आए। कहां गया अंग्रेज का राज जिसके ऊपर सूरज कभी अस्त ही नहीं होता था? आधी दुनिया के ऊपर अंग्रेज का राज था, अब कहां है? अब तो वो अपने आप को संभालने में समर्थ नहीं है। लेकिन इतने सारे आक्रमण करने वाले आए, फिर भी भारत की संस्कृति सुरक्षित है कि नहीं? ये संतों की कृपा से है। आज प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में जाकर जो ये वैदिक सनातन धर्म का पिताका को फैलाया है, झंडा झुलाया है, इसका एक अच्छा परिणाम ये निकला है कि लोग ये जान गए कि भाई 2017 साल पहले ईसा आया, उससे पहले लोग क्या थे? 1400 साल पहले इस धरती के ऊपर इस्लाम आया, लेकिन उससे पहले क्या था? पहले लोग थे कि नहीं थे? तो वो कौन थे? 5000 साल पहले का मोहन के दड़े में देखते हैं कि लोग गेहूं की खेती करते थे, उनके घर के बाहर नालियां लगी हुई थी, लोगों के पास जब कोई सूझबूझ नहीं थी तब तो यहां बहुत बड़ी प्राचीन संस्कृति के तो अवशेष अभी भी मिल रहे हैं। और उससे भी ज्यादा हमारे पास तो इतिहास 5000 साल से ज्यादा पुराना महाभारत का इतिहास पड़ा है। और नहीं तो भी मैं उस दिन कितना मेरे को अभी एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, करोड़ों सालों के हिसाब से करको राम का इतिहास की बात चल रही है। ये जो 24वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में राम अवतार हुआ है, तो इतना ये पुराना इतिहास हमारे पास है। इसको इतिहास कहते हैं, उसका मतलब है पुराने हमारे पूर्वजों के महिमा। महाभारत का अर्थ लड़ाई नहीं, ये तो गलत अर्थ निकाला है। महान भारत का इतिहास, महाभारत का अर्थ है महान भारत का इतिहास, जिसके अंदर भगवान के अवतार और भगवान के भक्तों के साथ भगवान का कितना प्रेम का, भक्त वत्सल्य का कैसा संबंध है कि भगवान अपने भक्त के लिए रथ के सारथी बन के घोड़े हांकने को तैयार होते हैं, ऐसा भगवान कहीं दुनिया में मिलेगा क्या? ऐसा दयालु भगवान मिलेगा जो अपने भक्त की रक्षा के लिए उसका ड्राइवर बन जाए? ये दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा भगवान। इतना अद्भुत इतिहास, उसके अंदर, उस महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र की के युद्ध का वर्णन है, और उस युद्ध के अंदर भगवत गीता के अवतार का वर्णन है, और वो भगवत गीता विश्व के मार्गदर्शन का शास्त्र है। कहते ये संसार के अंदर टेलीफोन आप खरीदते हैं, सबके पास फोन है, उसके साथ किताब इतना बड़ा आता है, काहे के लिए किताब देती है सरकार, कंपनियां किताब क्यों बनाती हैं उसके साथ, किसको कैसे चलाया जाए? कोई भी आप बाहर की चीज खरीदो तो किताब, फ्रिज खरीदो तो भी किताब होता है, कैटलॉग उसके साथ होता है कि नहीं होता है? तो ये दुनिया भगवान ने बनाई, इसके साथ कोई किताब नहीं दिया हो क्या कि इसको कैसे चलाना चाहिए? कोई मार्गदर्शन नहीं किया होगा क्या? ये जो सत्य शास्त्र है ये कैटलॉग है, कैसे चलोगे तो सुखी रहोगे, ऐसे चलोगे तो दुख भोगोगे। लेकिन उसको लोग कोई पढ़ते नहीं है। अब कहीं किसी घर में गीता भागवत का पाठ होता हो, राम कथा होती हो, ऐसे घर आप गुड़गांव में ढूंढोगे तो उंगलियों पे गिनने जितने कोई 10, 50, 50, 100 भी को नहीं मिलेंगे। जबकि ये घर घर के अंदर होना चाहिए, ये दीप रोज घर में जलना चाहिए, अगरबत्ती रोज जलनी चाहिए, ये तो मर्यादा हो गई। लेकिन कलयुग के अंदर ये भी करना मुश्किल हो गया। लेकिन एक काम बहुत सरल है, और वो सबसे सरल काम है जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में भगवान श्री कृष्ण भक्त के भाव को अंगीकार करके, राधा रानी करुणामयी है, दयामयी है, मां है, और बच्चों का दुख देख नहीं पाए, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर गली गली में लोगों को सुखी होने का बहुत सरल साधन दिया। बहुत बड़े जज बंगाल के अंग्रेज के शासन के समय के भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि सब जीव जब मां के गर्भ में होते हैं तो भगवान को वचन देते हैं कि अब हम बड़े दुखी हैं, यहां उल्टे लटके हुए हैं, चारों ओर से थैली में बंद है, मल मूत्र के बीच में कीट पतंग काट रहे हैं, कीड़े वो हमको मुक्त करो, यहां से हम बहुत दुखी हैं, हम आपका नाम जपेंगे, और भगवान उनको वहां से निकालता है, संसार में आते हैं तो बेचारे रोते हैं, लेकिन लोग उसको मेरा मेरा कहते हैं और वो भगवान से किया हुआ वचन भूल जाता है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जो सब जीवों ने अपनी मां के गर्भ में भगवान से वचन किया था, उस वचन को याद करो, और भगवान बड़ा दयालु करुणामय अति औदार्य श्री चैतन्य महाप्रभु ये हरे कृष्ण महामंत्र लाए, इसको मांग के ले लो, और ये जप के अपने जीवन को सार्थक करो, सुखी करो, सफल करो। हमने कहा ब्रज के अंदर भगवान ने अपनी करुणा कृपा दया को रज के अंदर रखी है। ब्रज की रज की महिमा इतनी है कि मुक्ति भी पूछती है गोपाल से कि मेरी मुक्ति कब होगी, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रज की रज तुम्हारे माथे पे लगे थी तो मुक्ति तुम भी मुक्त हो जाओगे। तो ब्रज की रज की महिमा वृंदावन में, भगवान के नाम जपने की महिमा भगवान ने अपनी करुणा कृपा नाम में रखी है वो नवदीप में है, और भगवान ने प्रसाद के अंदर अपनी कृपा जगन्नाथपुरी में रखी। जगन्नाथ जी का प्रसाद सबका कल्याण करने वाला है, उस प्रसाद के लिए तो वो प्रसाद नारद को मिला, कभी भगवान वैकुंठ में किसी को प्रसाद देते नहीं है। लक्ष्मी को बहुत नारद ने प्रार्थना की तो एक दिन छोटा सा भगवान के भोग लगने के बाद प्रसाद दे दिया, और नारद ने खाया आनंद में, इतना नाच रहे थे। शंकर ने कहा क्या हुआ, नारद नाच रहे, बोला प्रसाद मिला, बोला हमको नहीं दिया, तुम अकेले खा लिया, और नारद की उंगली को पकड़ के शंकर जी चूसने लगे, और शंकर आनंद में मगन होकर नाच रहे थे। तो पार्वती कहती है कि आज क्या हो गया, आज आप कैलाशपति इतने बड़े आनंद में हो, तो बोला आज मेरे को वैकुंठ का प्रसाद मिला। बोला फिर मेरे को नहीं दिया, आपने कैसे खाया। तो फिर पार्वती जी ने कहा कि अब मैं इस धरती के ऊपर वैकुंठ नाथ का प्रसाद सब जीवों के कल्याण के लिए प्राप्त मात्रा में व्यवस्था करूंगी, और भगवान जगन्नाथ का प्रसाद, ये दुनिया में एक मंदिर है जिसमें 1,00,000 आदमी खाए इतना प्रसाद हर वक्त तैयार होता है, 1,00,000 आदमी खाए इतना दाल चावल सब्जी और मिष्ठान तैयार होती है, कभी भी जाओ, ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी नहीं है कि जगन्नाथपुरी में प्रसाद ना मिले। तो ये भगवान ने प्रसाद की व्यवस्था इतनी सुंदर की, ये जो सरदार जी बैठे हैं, ये जो आरती गाते हैं अपन गगन में थाल, सरदार जी ये आरती भगवान जगन्नाथ के मंदिर में गुरु नानक साहब ने गाई, कहिए ये जगन का नाथ है, जगत का नाथ है, तो इसकी आरती तो आकाश होना चाहिए, गगन होना चाहिए, और तारे और सूर्य इसमें दीप होना चाहिए, और हवा इसको चंवर झुलाना चाहिए। ये जगन्नाथ मंदिर में आरती मुख से निकली है गुरुजन पे, और कटक में गुरु नानक साहब और चैतन्य महाप्रभु मिले हैं, और दोनों ऊपर हाथ करके कीर्तन में आनंद से कीर्तन किया है, और वृंदावन में गुरु नानक साहब का आज भी गुरुद्वारा है, आए थे रहे थे गुरुद्वारा है, ये जानते थे। और इतना सुंदर लिखा है भगवान श्री कृष्ण की महिमा इतनी सुंदर लिखी है। गुरु गोविंद सिंह महाराज का तो दशम ग्रंथ में एक पूरा विभाग कृष्ण लीला का है और कृष्ण के वीर रस का है। ऐसी लीला गाई है गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दशम ग्रंथ में गुरु भगवान श्री कृष्ण की वीर रस का, कि कैसे वीर हैं भगवान, उसका वर्णन बहुत विस्तार से किया है। तो अब हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि ये महीना तो सेल, जैसे दिवाली में सेल लगती है, 1000 की चीज 100 में मिल जाती है, ये कार्तिक महीने का बाकी एक दिन बचा है, 2 दिन बचे, 3 और 4। आप अपने घर में दीप तो जरूर कीजिए भगवान श्री कृष्ण को, और हरे कृष्ण मंत्र का जप जितना एक माला हो सके, 2 दिन भी करोगे तो कम से कम अपने 10 साल का तो सार्थकता करी हो ही जाएगी, और इसके बाद तो फिर सामान्य रेट चालू हो जाएगा। तो 2 दिन का लाभ ले लो, और अपने घर में अगर आप एक ये काम करो, कुछ हम छोड़ने को नहीं कहते हैं, आप एक चीज जोड़ लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये एक चीज, इसमें कुछ खर्चा नहीं है, लेकिन ये वेदों का मंत्र है और ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु आते हैं तब प्रकट होता है, अन्य युगों में ये मंत्र नहीं मिलता है। अन्य युगों में मंत्र होता है कृष्णाय वासुदेवाय हरि हे परमात्मने नमः, ये मंत्र तो हो सकते हैं, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र जो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये तो धन गोलोक का है, ये तो गोपियां और राधा रानी कीर्तन करती हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में करती हैं। तो ये तो महाप्रभु जब राधा के भाव में आते हैं तब ये कृष्ण को प्राप्त करने का सरल मंत्र देते हैं, नहीं तो ये मंत्र अन्य किसी युग में उपलब्ध नहीं होता है। हम भाग्यशाली हैं, 525 साल पहले महाप्रभु ने ये इतना बड़ा प्रसाद दिया है। भगवान श्री कृष्ण भी कोई 5200 साल पहले आए हैं, तो हम भाग्यशाली हैं कि हमको ये दो बहुत नजदीक का इतिहास मिला है, और आज भी विश्व भर में हमने देखा जो लोग भारतीय मूल के नहीं हैं, जो विदेशी हैं, वो भी इस हरे कृष्ण मंत्र जपने से उनमें अच्छे संस्कार आ गया, उनका खान पान बदल गया, उनका रहन सहन बदल गया, उनका आचार विचार बदल गया, और वो साधु हो गए, और उन्होंने प्रभुपादी का ऐसा सहयोग किया, और ये सब 18 और 25 साल की उम्र के लड़के थे, और उन्होंने पूरे विश्व के अंदर सनातन वैदिक कृष्ण भावना अमृत संघ का अति अद्भुत एक आंदोलन स्थापित कर दिया। अब तो वो दिन दोगुने और रात चौगुने बढ़ रहा है। प्रभुपाद जब गए थे एक मास्को में, एक बार 3-4 दिन के लिए गए थे, एक ही भक्त मिला था, लेकिन आज 100 से ज्यादा मंदिर मास्को में होंगे, जहां भी देखोगे कि रशिया के भक्त आपको वो स्त्रियां साड़ी पहनी हुई और पुरुष धोती पहने हुए और तिलक लगाए हुए माला हाथ में लिए हुए जगह जगह मिलेंगे। जब मेरे को आश्चर्य लगता है कि हमारे संस्कार समाप्त हो गए। पहला संस्कार विवाह के बाद होता है गर्भदान संस्कार, इसका मतलब नवा विवाहित मात पूजा कराते हैं कि भगवान कोई अच्छी आत्मा हमारे घर में संतान के रूप में आए। ये गर्भदान संस्कार भारत से लुप्त हो गया। मैं आश्चर्य मुझे लगा जब मैं रशिया में था और मुझे कहा कि आप आइए यज्ञ कर रहे हैं, मैंने क्या यज्ञ, बोला गर्भदान संस्कार करा रहा है, एक बच्ची शादी विवाह हुआ है वो गर्भदान संस्कार के लिए पूजा कराने आए, और दूसरी गर्भवती है उसकी पूजा वो पति उसके सिंदूर भरेगा और बहुत सुंदर एक ये संस्कार है। एक 5 महीने गर्भवती 5 महीने की पति दोनों का संस्कार होता है। ये संस्कार कहीं हो रहा है क्या? समाप्त हो गया हमारे यहाँ, और वो लोग ये संस्कार अभी करना शुरू कर दिया, उनको सिखाया और शुरू कर दिया उन्होंने, और ये संस्कार हमारे पास। प्रभुपाद जी जब गए देखा लड़का लड़कियां सब साथ आ रहे हैं, आए वो सब तो नौजवान थे। प्रभुपाद ने कहा देखो आप साथ ऐसे रहोगे तो ये तो धर्म नहीं है, आपका विवाह कराता हूं, आओ। आपको लड़का लड़कियों का विवाह करा दिया, और उनमें से बहुत सारे तो अभी तक 30-40 साल से विवाह अब जीवन जी रहे, नहीं तो वो उस संस्कृति में विवाह ऐसे चलते नहीं थे। 50 किए मानो के 4-5 नहीं चले, 5-7 हो सकता है कोई बात नहीं, लेकिन ये संस्कार तो उनको दिया। तो ये हमारे संस्कार समाप्त होना, सुबह उठ के नहाना है,
फिर चूल्हे चौके में जाना है, चूल्हा जलाना है, ये समाप्त हो गया हमारे समाज से। जब से अंग्रेज ने चाय की बीमारी डाली तो हमने बगैर नहाने के चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है कि नहीं सब घरों में। और पुराने जमाने के किसी व्यक्ति से पूछो कि बगैर नहाने कभी जाता है कोई चौके चूल्हे में? नहीं जाता है ना। ये नियम था कि नहीं पुराना? ये था ना, 4 बजे उठने का नियम था कि नहीं पुराने जमाने में? पानी भरने जाते थे, वो दही मंथन करके अपने घर का मक्खन निकालते थे, था कि नहीं? अपने हाथ से चक्की का आटा घर में पीसते थे कि नहीं? देखे थे कि नहीं? नहीं मैया देखा कि नहीं देखा? और तब के बच्चों के अंदर लक्षण कैसे थे? अपने घर का मक्खन खाते, अपने घर की माँ के हाथ के पीसे हुए आटे की रोटी खाते थे, तो बच्चे माता पिता की सेवा करते थे। अब कोई एक दिखाओ बच्चा जो माँ बाप की सेवा करता हो, है कहीं? मिलता है? दिखता है? देखना है? दिख रहा है कहीं? बहुत बड़ी समस्या है समाज की। आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा ये आप विचार करके देखो कि आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा, आने वाली पीढ़ियों का हाल क्या होगा। अगर हम दुनिया को सिखाने वाले ही संस्कारहीन हो गए तो फिर संस्कार कहां से आएगा? तो प्रभुपाद जी महाराज का ये कृष्ण भावना अमृत संघ विश्व को संस्कारित करके सुखी करने के लिए है, और भगवद गीता की शिक्षा के ऊपर आधारित है जो स्वाभाविक है, आनंद प्रदान करने वाली है। इसलिए आप इसमें सहयोगी बनके, साथी बनके अपना कल्याण कीजिए और दूसरों को भगवान के निकट लाके उनको भी सुखी कीजिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 2 दिन और कार्तिक के कम से कम घर में दीप जलाइए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, और आगे भी जो हमारे यहाँ नजदीक में जहाँ साप्ताहिक सत्संग है उसमें आप आए और स्वयं सीखें और अपने परिवार को सिखाएं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।